نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير دور قرآن 2024 DQ 2024 اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارا نمبر 23 جو بالکل صورت یاسین کی آیات سے شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس بارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے اندر کتنا خوبصورت ربط ہے. ابھی جب پارے کا تھیم بتاؤں گی تو پھر آپ اس کو انجوائے کریں گے. ابھی اس وقت ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ پچھلے پارے میں ہم نے کیا دیکھا کیا تھا. تو پچھلے پارے کی جھلکیوں کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہم نے پارا نمبر 22 یعنی 22 میں کیا دیکھا تھا, سورۃ الاحزاب 31 سے 73, پھر پوری سورۃ سبا, فاطر اور اس کے بعد یاسین کی 21 آیات پڑھی. ایمان والوں کی خوبیاں بھی دیکھیں اور درود و سلام کی رغبت بھی دیکھی سورۃ الاحزاب میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بھی تھیں کہ پچھلے نبی بھی جھٹلائے گئے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, اور 10 الفاظ میں اسلامی عقیدے اور اسلامی کردار کے وہ پہلو دیکھے جو اللہ مجھے اور آپ کو بنا دے المسلمین والمسلمات سے لے کے آگے تک, اور پھر آپ کا خاتم النبیین ہونا یعنی آپ نبوت کی مہر ہیں, سٹیمپ نہیں. ہی واز سیل آف دی پروفٹ ناٹ دا سٹیمپ, کیونکہ آج اس ایک لفظ کے فرق کو سامنے رکھ کر کئی چیزیں لوگوں نے بنا کے سنوار کے پیش کر دیں. چونکہ ہم سورہ یاسین کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو سورہ سا سورہ یاسین کو سمجھتے ہیں. یہ وہ سورت ہے جسے امت مسلمہ میں بہت محبت ہے. اکثر گھروں میں لوگوں سے اگر قرآن آپ بورو کریں پڑھنے کے لیے تو عموماً سورت یاسین کے پیجز کثرت استعمال کی وجہ سے دوسرے صفوں سے مختلف ہوتے ہیں. یہ اس سورت کے ساتھ ہماری محبت ہے. اللہ کرے کہ ہم پھر اس کو سمجھ بھی سکیں کہ یہ سورت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے. تو اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے والا ہے, یعنی انسانیت کی موت قیامت, اور اس سے بھی بہت پہلے تمہاری اپنی موت آ سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مَن مات فقد قامت قیامتہ, کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اور رسولوں کو ماننے کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے جانے کے دور کے اشارے ملتے ہیں. پھر ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی تھیں اس میں ایک لفظ آیا تھا وَجَا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ, اور دور سے ایک شخص دوڑا آیا. تین رسول ایک بستی کی طرف بھیجے گئے لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے, جن کو نہیں آنا ہوتا وہ نہیں آتے, کیونکہ پھول کی بتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نازاں پہ کلام دل فریب بے اثر. لیکن یہ ایک دور سے آیا, ذرا سا اس کا ایک بہت ہی ایک ایموشنل لیول سوچئے, اس کو کس نے بتایا؟ اس نے تو خود نہیں سنا رسول کے پیغام کو, کسی نے تو اسے بتایا ہی ہوگا نا, کسی نے تو اس کو موٹیویشن دی ہوگی نا, اور جو اس کا صدقہ جاریہ بن گیا. آپ کے میرے لیے یہاں ایک عمل کی بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں آپ کو نیکی کا کوئی موقع ملے تو اس کو قبول کر لیجئے. کیا پتہ کہ وہ شخص جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ آپ سے بھی زیادہ نیکی کر لے. ایک استاد کی کلاس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک امام بخاری بن جاتا ہے, اور استاد کو اگر اس دن پتہ ہوتا کہ یہ بچہ کل میرے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا تو کوئی اور ایک بھی نہ آئے, استاد اسی کو پڑھا کر کامیاب ہوتے. تو اسلام ہیڈ کاؤنٹ بنانا نہیں سکھاتا ہمیں, بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے ساتھ پڑھائیے, بتائیے سنسیئرلی, ہر آنے والے کی قدر کیجئے, شاید اللہ تھوڑوں کو ہی زیادہ کر دے. کچھ لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں آتے, ڈی کیو اسٹیشن بنے بہت لوگ نہیں آئے. فکر نہ کیجئے, ذرا اس دن کو تصور میں لائیے کہ جب آپ اللہ سے ملیں گے, اور جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور ملاقات ہوگی اور آپ کہیں گے اللہ میں نے اس کو بھی بلایا, میں نے اس کو بھی بتایا, اللہ میں نے خود کو بھی بتایا. کبھی کبھی ہم دوسروں کو بہت بتاتے اور بلاتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. تو لکھیے, دوسروں کو بتانے اور بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے. آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو آپ خود کو یاد رکھیں گے. کسی کی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی کتنی تیاری ہے, तो वो बात कुछ इस किस्म की थी कि उन्होंने ये बताया कि एक शख्स था, यूके की ये बात है, तो किसी भी वजह से उसको मलका एलिजबेथ को मिलने जाना था। तो जब उसका वो अपॉइंटमेंट सेट हो गया और वो जाएगा और वहाँ उसने अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी, तो फिर उन्होंने किसी को बुलाया, इसको उधर भेजा, यानी दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल जहाँ उसको ये तक बताया गया कि तुमने मलका के सामने कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। अब अगर इधर कप होता तो मैं बताती कि जब तुम चाय का कप पकड़ोगे ना, तो ये जो उंगलियाँ ना, ये मलका की तरफ नहीं होनी चाहिए। आप उल्टे हाथ से पकड़े ना तो कप में से उंगलियाँ बैठ जाती हैं, और बाजू किधर हो, हाथ किधर हो, तुम्हारी नज़रें किधर हो। तो ज़रा सोचिए कि अगर एक मलका को मिलने वाले को मैनर सिखाए जाएं, तो आपको मुझे अल्लाह से मुलाकात का शौक़ नहीं लगा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़त नज़री इला वजहिक व शौक़ इला लिकाइक। तो अल्लाह से मुलाकात का शौक़ जो है ना, ये बंदे को बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठा देता है, और एक बंदा फिर अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ को ले लेता है कि मैंने अपने आप को संवारना है, मैंने आपको सजाना है। नमाज से पहले अपने आप को सजाया करें, साफ़ सुथरे कपड़े, इत्र लगाएं, जाए नमाज के ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा लें। आपके जो नमाज के दुपट्टे हैं उनमें से घी की बू नहीं आनी चाहिए। सर पे अक्सर ऑयल लगा होता है तो उसकी बू आती। कभी किसी का दुपट्टा नमाज का देखें, कभी कभी ऐसा होता है, हर वक्त तो नहीं, लेकिन उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो जब आप अल्लाह से मिलने जाएँ, आप यहाँ भी आते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा सजा के लाएँ, सोच के साथ नहीं कि लोग आपको देखें, इस सोच के साथ कि आपका रब आपको देखे। फिर आप देखिए कि इस शख्स जिसकी कहानी अब आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, उसने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी और पैगंबरों की दावत की तायद की। इसके इसी कीमती अमल पर इसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और इसका ये जुमला भी हम सुनेंगे, काश लोग मेरा अंजाम देख लेते। ये इसके खैरख्वाह और सच्चे मोमिन होने की दलील है। तो आइए देखते हैं कि ये जुमले वो कब बोलेगा, कहाँ बोलेगा। लेकिन आज के पारे पे एक नज़र डाल लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से एक भी आयत नहीं है, क्योंकि अब माशाल्लाह 22 पारे पढ़ चुके, अब आपको इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि बाहर से कोई आपको पुकारे ना पुकारे, लेकिन आपको अपने नफ्से लवामा की पुकार पे लब्बैक कहना है, और हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगियों से निकाल देनी है कि जिससे आप अपने रब से दूर हों। पारा नंबर 23, जिसको हम आज देखेंगे इखलास की रोशनी में। इखलास क्या होता है, मुखलिस कौन है, मुखलस कौन है, ये पूरा पारा आप अभी सूरत यासीन की पहली आयत से लेकर सूरत जुमर की आखिरी आयत तक देखेंगे। जो कॉमन थिंग, जो डोरी है ना, इसके अंदर लड़ी है मोतियों की, वो इखलास की लड़ी है। और इसमें हम नसरु मिनल्लाह ही व फतहुन करीब के मौजू को देखेंगे कि मुखलिस तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह की मतलूबा मदद कब आती है? जब बंदा मुखलस होता है। इसका फ़र्क क्या है? मुखलिस मुफइल, वो शख्स जो के इखलास हासिल करने की कोशिश कर रहा है। फाइल कौन होता है? काम करने वाला। लेकिन जब आप इसको मुखलस कहते हैं, मुफअल मफूल का वजन होता है, यानी जो इखलास हासिल कर चुका। नहीं समझ आया तो घबराइए नहीं, बस इतना कह दूँ कि मुखलिस बनना बीच रास्ता है। अभी अभी आप निकल पड़े हैं घर से लाहौर जाने के लिए, आप यहाँ से निकल पड़े हैं फ्लोरिडा जाने के लिए, लेकिन अभी पहुँचे नहीं, लेकिन मुखलिस पहुँच चुका है। और अम्बिया कराम मुखलिस थे। पूरी सूरतों में आपको पूरी लड़ी दिखेगी। और मुझे है हुक्म ऐसा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बारे में से आपने, मैंने जो अपने लिए चीज़ चुननी है वो क्या है कि सारी दुनिया भी आपको किसी बात से रोके, लेकिन आपका रब आपको उसके करने का हुक्म दे, तो आपने लब्बैक कहना है। यही इखलास होता है। और ईमान की ताकत चाहिए है किसके लिए? मुखलिस को मुखलस में डालने के लिए। हम थोड़े होते हैं, अल्लाह कहते पूरे बनो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, ये है मुखलस, पूरे का पूरा इस्लाम में आ चुका है। और कभी कभी मुखलिस शख्स भी अफतू में नूना भी बादिल किताब तक फुरूना भी बात के बीच में लटका होता है, हैंगिंग अराउंड। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो नमाज़ें भी पढ़ते थे बचपन से, रोज़े भी रखते थे, लेकिन ये है कि अब कुरान पढ़ने के बावजूद कुछ चीज़ें नहीं छूट रही, कुछ खराबियाँ नहीं निकल रही, तो मतलब ये कि अभी वो मुखलस नहीं बने। वो ईमान मांगिए जो मुखलसीन का है। हज़रत इब्राहिम मुखलस थे, इसलिए आग ठंडी हुई। हज़रत यूनुस से एक इज्तिहादी गलती हुई थी, बेसब्री हुई थी, लेकिन वो मुखलस थे, इसलिए अल्लाह ने मछली के पेट में रास्ते बना दिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हज़रत सुलेमान और दाऊद दुनिया की दौलत से मालामाल थे, लेकिन अखलास की दौलत से मालामाल थे, इसलिए उनको नुकसान नहीं हुआ। अच्छी दौलत, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर मुखलसीन को नुकसान नहीं देता। फिर ख़ास तौर पे अगर पारे की पर्सनैलिटीज़ में देखें तो हबीब, जिसका तذکرہ भी शुरू के अंदर ही है, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब मुखलस थे। 18 साल की बीमारी, जो एक रिवायतन हमारे यहाँ बात मारूफ है, उसके बावजूद घबराए नहीं। तो मुखलस वो होता है कि जो अल्लाह की तरफ से आई हुई बीमारी को ऐसे लेता है जैसे किसी ने तोहफा दिया है। अल्लाह करे कि हम अल्लाह की तरफ से मिले हुए दुखों और तकलीफ़ों पे उससे ज़्यादा खुश हों जितना के लोग उसकी तरफ से मिली हुई खुशियों पे खुश होते हैं। फिर आगे चलते हैं, अब सूरह यासीन को ज़रा से तर्जमे के साथ पढ़ते हैं और इंशाल्लाह हम इसमें से अमल के नुक्ते लेते रहेंगे। सूरह यासीन की आयत नंबर 22 से 83, यानी सूरत के एंड तक हम पढ़ेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, राहे हक का शहीद। कौन? मुखलस। वमा लिय ला अबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। आप पूछेंगे आपने कैसे कह दिया कि हबीब मुखलस था, उसका जुमला पढ़ लीजिए। ये मुखलसीन का जुमला कैसे, वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह के दर्जों से गुजरता गुजरता इंसान मुखलस हो जाता है। जुमले के अंदर छुपा हुआ इखलास और इसकी सच्चाई देखेगा। और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये जुमला अपने लिए याद कर लीजिए। ये जुमला मुखलसीन का जुमला होता है। हमें सारी ज़िंदगी झूठे और नकली खुदा अपनी तरफ बुलाते भी रहते हैं और ख़ुद से या अपनी नाराज़गी से डराते भी रहते हैं, और हम उनके डर से अपने रब्बे हकीकी को नाराज़ करके मजाजी खुदाओं और न जाने कौन कौन से खुदाओं के नाम पर नाफरमानियाँ करते हैं। सारा जहाँ एक तरफ और मुखलस एक तरफ। क्यों? कि सारी दुनिया एक तरफ और रब एक तरफ, तो बंदा किसी और का अब्द बन नहीं सकता जब उसके अंदर इखलास मतलूबा मेयार तक हो जाए, और दूसरी बात कि मुझे उधर लौटना है। ये दो चीज़ें हैं। आज आप और मैं पारे के शुरू में अपने लिए एक गोल सेट करें। मैंने अल्लाह के माँ सिवा की इबादत, इताअत, बंदगी नहीं करनी। और यहाँ कौन सी इबादत थी देख लीजिए, अभी को नमाज रोज़े की तो बात ही नहीं। हम तो अपनी ज़िंदगियों में नमाज रोज़े करके फारिग हुए बैठे हैं। ये कौन सी इबादत थी? उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नबियों के झुटलाने वाली कौम के सामने कलमाए हक रखा। सारी दुनिया की अदालतों को जमा करके एक बड़ी अदालत में बंदे को खड़ा कर दिया जाए तो वो बोले कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये करेज मिलता है उनको जिनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत कूट कूट के भरी होती है। और दूसरी बात है कि वापसी, मुझे तो आना है उसी की तरफ। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके? फिर तो मैं खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। मुखलिस, एक एक जुमले में देखिए लोगों को उनके अल्फाज से पहचाने। एक ही जुमला होता है, एक ही आयत होती है, तीन चार लोग मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, या कारी है या तजवीद है, और या कोई पढ़ाता है, उसके तासीर फ़र्क होती है। कोई गुजर ही जाता है, आपको पता ही नहीं चलता क्या गुजर गई बात, और कोई उसी पर रुक जाता है। इस शख्स का ये जुमला, अल्लाह ताला ने इसकी कितनी कदर की, सुनिए। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगा काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में से कर दिया। इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर न उतारा और न इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बुझ बुझा के रह गए। चिंगारियां एंड पे बिल्कुल बुझ जाती है ना, खामिदून, खमूद कहते हैं चिंगारियों के बुझने को। या हसरत अली बात, अब ज़रा नोट कीजिए इस अंदाज को, या हसरत अली बात। आप देखेंगे लफ्ज़ ये बात बहुत दफ़ा आता है सूरत में। ये रब का पैगाम है बंदों के नाम। क्या? या हसरत अली बात, ऐसे बंदों पर अफसोस है कि कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया कि वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाएगी। वापसी। एक आयत है ईमान से मुतल्लिक, 25, इन्नी आमंतु बिरब्बिकुम फस्माउन। बेशक मैं ईमान ले आया अपने रब के ऊपर, پر تم ایمان لاؤ، تم اس کو دیکھو، لکھئے، لوگ خلاف مزاج بات سننا پسند نہیں کرتے، اسی لیے بہت ساری باتوں کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ جتنا زیادہ ان کی مرضی کی بات کی جائے وہ اتنے خوش ہوں گے، اور اس سے اپوزٹ بات کو وہ سننا گوارا نہیں کرتے۔ آپ کے میرے لیے عمل کی بات یہ کہ اللہ کی بات سنیے، اللہ جس بات کو پسند کرتا ہے اسی کو رکھیے، باقی چیزوں کو پیچھے ڈال دیجئے۔ اور میرے اور آپ کے لیے یہ بات بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس چیز کی نیت کرنی ہے کہ بات رب کی ماننی ہے، وہ مجھے سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، اور وہ میرے لیے قابل عمل ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی بات دیکھیے کہ بمالی العبد الذی فطرنی، اس شخص نے ایمان لانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج کوئی زکوٰۃ نہیں کی، جو ہمارے کلچر میں عموماً انہی چیزوں کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ ہے جنت، یہ ہے وہ چیز۔ وہ کون سی نیکی تھی؟ وہ اخلاص کی نیکی تھی۔ اللہ آپ مخلصین کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور میں آپ کو مخلص لفظ کا پاکستانی انڈین ترجمہ بتاؤں، اپنا، آپ میری اپنی ہیں، میں آپ کی ہوں۔ یہ جو اپنائیت ہے نا، یہ اخلاص ہے، اللہ کے ساتھ اپنائیت۔ جب بندے کو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، جہاں چاہ ہی نہیں وہاں راہ نہیں۔ جس بندے کو اللہ سے محبت نہیں ہوتی، اس بندے سے اللہ کو بھی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح نہیں کرتے، اور گلے اور شکوے کرتے ہیں، روتے دھوتے رہتے، ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا۔ اس لیے کہ آپ مخلص نہیں ہیں۔ آپ ایک دفعہ کسی کے اپنے بن تو جائیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لوح و قلم بھی تیرے ہیں، ہم نے ابھی اللہ سے پورا مانگا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیرت میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ کتنے لوگ اللہ کے نبی کی زندگی میں میدان جنگ میں لوگ آتے تھے، وہی مسلمان ہوا شخص وہیں شہید ہو گیا۔ آپ نے کہا دیکھو اس نے ایک نماز نہیں پڑھی لیکن جنت مل گئی۔ تسبیح نمازیں ڈھیر رکھی ہوئی ہم نے، لاکھ لاکھ کلمے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے اپنے بن جائیں۔ میں تو اس کا ایک نام دوں گی، ابھی بھی لکھ سکیں تو لکھ لیں، اپنائیت۔ اخلاص کیا ہے؟ اپنائیت۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی باتیں ایک برابر لگتی ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے بن جاتے ہیں نا، پھر اللہ ان کو وہ دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا۔ پھر آپ دیکھیے، ہم نے آئی 12 میں دیکھا تھا ما قدموا وآثارہم، اس پہ ایک جملہ لکھ لیجئے کہ اس دنیا میں ہر شخص کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ دنیا کی ویڈیوز میں کیا دکھاتے ہیں آج کل، تو آپ کو اندازہ ہی ہے، شکل بدل دیں گے، رنگ بدل دیں گے، لینز لگا دیں گے، پتلے کو موٹا کر دیں گے، لیکن ابھی تک اتنے کیمرے لگانے کے باوجود فونز نے وہ کیمرہ نہیں لگایا کہ جس میں آپ کی نیتیں اور آپ کے ارادے بھی ریکارڈ ہوں۔ قیامت کے دن مخلصین کی شکلیں بڑی خوبصورت ہوں گی، کیونکہ وہ اندر سے بھی خوبصورت ہے۔ ہاں، دوغلے لوگ، منافق لوگ، اور وہ لوگ کہ جن کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی تھی لیکن وہ ان نعمتوں کو پا کر پھر شیطان کی باتیں مانتے رہ گئے، وہ بہت نقصان میں ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آگے، صحیح ختم ہوا عہدہ، سور پھونکنے کی بات ہے۔ سور پھونکنا ایسے ہی ہے جیسے امتحان کا وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجی، پیپر آپ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ ابھی آپ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے لکھیں لکھیں لکھیں، اور جو ہی گھنٹی بج گئی وہ کہتے ہیں پیپر دے دیں دے دیں، نو مور ٹائم۔ جو ہی سور پھکے گا نا، دنیا کا نظام بدل جائے گا اور انجام کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہاں امتحان کا مرحلہ ہے، سور پھونکنے کے بعد اب رزلٹ کا انتظار کریں گے، اور شہداء کے لیے جنت پہلے سے منتظر ہوتی ہے۔ پھر اس شخص کے کردار سے ایک اور بات پتہ چلی کہ مخلص مومن خیر خواہ مبلغ ہوتا ہے۔ اس کو مال دولت نہیں چاہیے، اس کو آپ سے کوئی ایسی چیزیں نہیں چاہیے کہ یہ دیں گے تو وہ کروں گی، یہ نہیں ہوگا، میری یہ شرط نہ مانی، نہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قیمت پہ بھی مجھ جیسے نکمے بندے سے کوئی کام لے لے، میں معافی مانگ لوں گی، میں معذرت کر لوں گی اپنے ساتھیوں سے، لیکن مجھے میرے کام سے ہٹانا نہ۔ اللہم استعملنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ تم مجھ ہی سے کام لے لے اور مجھے بدلنا نہ۔ اپنے حصے کی نیکی دوسرے کو اس طرح نہیں دینی چاہیے کہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں میں کسی اور سے یہ کام کروا لوں گی، مجھے آپ دے دیجئے، میں کروا کسی اور سے لوں گی۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ کہ اپنے مخالفین کی بھی خیر خواہی کرنی چاہیے، روز محشر کی تیاری کرنی ہے تاکہ اس دن کی حسرتوں سے بچا جا سکے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، صرف اسی کی بندگی کرنی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے انشاءاللہ ہم نے اس سارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے کہ مالک ہمیں اخلاص دے دے، آگے چلیں گے۔ رکوع نمبر 3 ہے سورت کا، 33 سے 50، آیت نمبر، اہل جنت اور جہنم کے احوال۔ وایت اللہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا، اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکا یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندازہ مقرر کردہ غالب با علم اللہ تعالیٰ کا، اور آسمان کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی، یعنی چاند کے مختلف مراحل، اس کو ایک آیت میں کیسے اللہ نے خوبصورتی سے بتا دیا۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ کون سی؟ آپ کی میری گاڑیاں، اس دور میں تو نہیں تھی نا، آج تو آ گئی نا، اسی کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اور وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ تو کوئی ان کفار کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ اس سے بچائے جا سکتے، لیکن ہم اپنی ہی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدے دے رہے ہیں۔ اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی آتی بھی نہیں کہ جس سے وہ بے روحی نہ برتتے ہوں، یعنی ہر نشانی سے منہ اور آنکھیں اور سر پھیر کر ہی گزر جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں، جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا، تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں۔ آپ دیکھیے کہ خرچ نہ کرنے کا کتنا اچھا بہانہ ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم ان کو کیوں دیں؟ سوچئے کہ یہ بھی ایک بہت ہی بڑا ایک عقل مند ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتلاؤ۔ انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے۔ قیامت اچانک آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے کا جو رکھوالا ہے وہ اس کے لیے ابھی پانی کا انتظام کر رہا، اس کے لیے ایک حوض بنا رہا ہوگا، اور قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کپڑا بیچنے والا بیچ چکا ہوگا، خریدنے والا سودا کر چکا ہے، ابھی صرف وہ کاٹنے لگا ہے، اور اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2012 میں قیامت آنی تھی اور اس میں آ گئی تھی اور اس میں آئے گی؟ کسی کا اس بارے میں پوچھنا بھی اس کے عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کبھی ایسی چیزیں جس کا تعلق مستقبل کے حالات سے ہو، پامسٹری وغیرہ، اس سے کبھی بھی اپنی توجہ نہ رکھیں، کیونکہ یہ عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پھر ایمان سے متعلق ایک آیت ہے، 47 یاسین، نعمتوں کی آزمائش محرومیوں کی آزمائش سے بڑی ہوتی ہے۔ نہ اللہ میں نعمتوں کی آزمائش دے اور نہ محروم رکھے، یعنی نہ دے کے آزمائے نہ لے کے آزمائے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کسی کو دے کے آزمایا اور کسی سے لے کے آزمایا۔ انبیاء کرام کی کہانیوں میں یہ ساری چیزیں، حضرت مریم کو بیٹا دے کے آزمایا، اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کے بیٹے کو ان سے لے کے آزمایا۔ تو آپ کی میری زندگی میں اللہ کبھی بھی اولاد کی آزمائش نہ لائے۔ پھر فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ کہ جو رزق اللہ نے عطا کیا وہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، نعمتوں کے صحیح استعمال سے ان کی شکر گزاری کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے جو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ آگے جی، رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51 سے 67، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن جی اٹھنے کا منظر۔ ذرا تصور کی نگاہ سے دیکھیے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے یہاں بڑی ایک معروف کتاب تھی، آلموسٹ سب گھروں میں ہی ہوتی تھی، قیامت کا منظر۔ मरने के बाद के। और वो जहाँ किताब पढ़ी होती थी वहाँ से गुजरते हुए भी डरते थे कि पता नहीं इसमें से हम क्या पढ़ लेंगे और क्या होगा। फरमाया व नुफिख़ फ़िस सूरी फ़ैज़ा हुम मिन अल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। तो सूर के फूके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज़ तेज़ चलने लगेंगे, कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाब गाहों से किसने उठा दिया, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था, ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। और क्या कहा जाएगा, बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ इन ही कामों का जो तुम किया करते थे। ज़रा सा अपने आप को लाइए तसव्वुर में और दुआ करें कि आप और मैं हम सब कैसे अपने बच्चों अपनी फैमिलीज़ को जन्नत के ख्वाब दिखाएं। इन आयतों को सुनते वक्त ख़ास तौर पर अपने दुआ करनी है कि अल्लाह हमें हमारे प्यारों के साथ जन्नत में लेके जाना। ज़रा सोचिए कि जन्नत में गए और पता चला कि एक बेटा ही नहीं आया, बच्चे ही नहीं आए, शौहर नहीं आया, बीवी नहीं आई, भाई बहन नहीं आए, तकलीफ़ होगी ना। अल्लाह ताला हमें ऐसी तकलीफ़ों से बचाए, बल्कि जो यहाँ खुशगपियाँ हो रही हैं अल्लाह ताला हमें भी इसी का मिसदाक बना दे। और वो क्या है, जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं, वो और इनकी बीवियाँ सायों में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ, आप इसकी कोई हद लेना चाहें तो वही सूरह सजदा की आयत, फला तआलम नफ्सुम मा खुफिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। आपको मुझे ज़िंदगी में हमेशा इस चीज़ की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मोर देन एक्सपेक्टेड, ये जो है ना ये मोर देन एक्सपेक्टेड है कि जन्नत में अल्लाह सिर्फ वो नहीं देगा जो आप डिज़र्व कर रहे होंगे या आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अल्लाह वो भी देगा जिसको आप कह सकते हैं कि जो उसकी अपनी ख्वाहिश होगी। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहा जाएगा, सलामुन कौलम मिर रब्बे रहीम। किसको सलाम आता है, जो दुनिया में इस्लाम पे हो, जो दुनिया में असलाम की उस दावत पे लब्बई कहने वाला हो। इसके बरक्स वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए गुनाहगारो आज के दिन तुम अलग हो जाओ, ए औलाद आदम क्या मैंने तुमसे कौलो इकरार न लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था और तुम नहीं सुनते थे, तुम्हारी तवज्जो कहीं और थी। अपने कुफर का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। बड़ी उदासी है सूरत यासीन में। हम आज के दिन इनके मुंह पर मुहरें लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो करते थे। इसी पे बस नहीं बल्कि, और अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते, अंधा कर देते इनको, फिर वो रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह ही पर इनकी सूरतें मसख कर देते, फिर ना वो चल फिर सकते और ना लौट सकते। कहाँ हैं हम, हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ हैं? आप देखिए कि आज हम जो भी ले लें, PhD, ABCDC, सिक्स फिगर सैलरी, कई बिलियन का घर, जो मर्जी ले लें, क़यामत के दिन क्या होने वाला है पता है आपको? जो शख्स सिर्फ वक्ती मुफादात के लिए सरगर्म रहा वो आखरत की अबदी दुनिया में खाली हाथ उठेगा। वी विल बी बैंक करप्टेड देयर। जो लोग आला मकसद के लिए जिए वो शानदार इंजाम पाएंगे। इनके लिए सबसे बढ़कर सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आपका रब आपको सलाम देगा। इस दुनिया में तो हम साथ हैं ना, अगली आयत में देख ले, वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, छट जाओ। ये जो लफ्ज़ है ना वम ताजु, अल्लाह अकबर, इसके अंदर एक दुनिया छुपी हुई है। गेट आउट, पीछे हो जाओ, सेपरेटर्स आ जाएंगे बीच में। मौजूदा दुनिया में अच्छे बुरे लोग एक साथ रहते हैं, ये घरों में भी हो रहा है, ये खानदानों में भी होता है, ये मुल्कों और दुनिया में भी हो रहा है, लेकिन अगले जहां में दोनों अलग अलग कर दिए जाएंगे, शैतान के बंदे शैतान के साथ और रहमान के बंदे रहमान के साथ। दुनिया में भी यही प्रायोरिटीज़ थी, वहाँ भी यही होगा। ज़रा सा सोचिए मैं किधर होंगी, जिधर आज दुनिया में हूँ ना उधर ही होंगी। और बंदा कई दफ़ा ना अपने घर के किसी एक नेक बंदे की ओट में छुप जाता है, जी अब्बा जी बड़े नेक हैं, जी अब्बा जी उनके अब्बा जी नमाजी हैं हाजी हैं। कई रिश्ते हमारे सिर्फ इस नाम पे होते हैं कि वो हाजी साहब के बेटे को रिश्ता दिया है और वो बेटी ली है, वो हमारे दर्स की साथी हैं, हम छुप जाते हैं। हमारे ख़ानदानों में कोई ऐसा होता है जिसके नाम पे लोग कहते हैं हाय आपका ख़ानदान इतना नेक है, ये नेकों का ख़ानदान है। लेकिन एक वो वक्त आएगा कि जब बंदा अलग होगा, बैरन लैंड है, सोचिए खुला मैदान है, और कोई वहाँ आपको धूप सेकने के लिए खड़ा कर दे। अगर आज शैतानी कामों पे दिल लगता है तो वहाँ शैतान के झंडे के नीचे खड़े होंगे, और रहमान है तो रहमान है। और ये जो आयत 60 में जुमला आया ना, अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की बंदगी ना करो। कभी आपने किसी को शैतान को सजदा करते देखा है कि 2 रकत नमाज बराए शैतान, तरावी नमाज फॉर शैतान? नहीं। हाँ एक दुनिया में बेहुदा सा गिरोह बन गया आज सैतनिक डेवल डिसेपर्स, वो वाकई शैतान की पूजा करते हैं। इसी आपके इस अमेरिका में एक स्टेट है जिसके अंदर वो एक टाउन है पूरी, जिसमें कपड़े पहन के जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ चारों तरफ शैतान के मुजस्मे लगे हुए हैं, लेकिन वो तो आटे में नमक भी नहीं है। दुनिया में कोई बंदा शैतान की वर्शिप नहीं करता, यहाँ ताबुदु से मुराद इताअत है। वो 3 रुख जो आपको सूरह फातिहा में सिखा दिए गए थे कि इबादत बंदगी परस्तिश गुलामी, तो क्या पता चला कि शैतानी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, उसके इशारों पे नाचना, उसको बड़ा समझना, उससे अपनी बातों को लगाना, ये है शैतान की बंदगी। आप ज़रा सवाल कीजिए कितने हैं जो आज शैतान के बंदे हैं, शायद अल्लाह के बंदों से ज़्यादा होंगे। अल्लाह हमें और उनको बचा दे। फिर 65 आयत में वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अरजुलुहुम की बात, हाथ और पाँव की गवाही। ये आपके हाथ और आपके पाँव आपके स्पाइज हैं, जासूस हैं, ये आपकी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं। कोई चुपके से आपकी रिकॉर्डिंग कर ले, आप कितना माइंड करेंगे? है भी गैर महज़्ज़िब बात, वीडियो बना के लोग ले जाएं, क़यामत के दिन पकड़े होंगे उसी वीडियो की वजह से। किसी की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली जबकि नहीं थी करनी, कोई बात नहीं थी, किसी झगड़ा हो रहा है आपने पकड़ कर रिकॉर्डर चला दिया। आज तो हर बंदा ये करता है, पहले कोई गिरता था लोग उसको उठाते थे रोड पे के गिर गया, अब वीडियो बनाते हैं कि ये मैं वीडियो वायरल कर दूँ, मेरा चैनल लोगों को नज़र आ जाए, वहाँ क्या होगा। और फिर उससे भी बढ़कर आपको बताएं, खाल, इंसान की खाल एक रिकॉर्डर है जिस पर इसकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, क़यामत के दिन रीप्ले होगा। सीडीज़ या टेप रिकॉर्डर पे आप रीप्ले करते थे ना चीज़ों को, बस यही होगा रिवाइंड करने के लिए। और दुनिया में ये चीज़ आज प्रूव हो चुकी है, आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन तक की चीज़ें आवाज़ें फ़िज़ा में हैं, सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट ढूंढ रहे हैं कि जिसे अब रिकॉल करें और लिख ले। आने वाले दौर में लोग माजी के लोगों की आवाज़ें सुनेंगे। ये जो दज्जाल ने आके मुर्दों को ज़िंदा करना है, ये भी कोई एक टेक्नोलॉजी होगी, और आज इससे बड़ी चीज़ें तो आपको सामने दिख रही हैं। और अगर कोई आपके घर में जासूस हो तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? इमेजिन तो कीजिए, हम कभी उसको घर में रखें तो इनको हम हाथ में रखें, इसको कहते हैं हमारे आस्तीन के साम, ऊपर से मीठे अंदर से कड़वे, इन्होंने कल हमें बहकाना है, इनको कहाँ उठाया, इनसे क्या पकड़ा, इससे क्या किया। और फिर 68 आए तो बहुत ही दुखी करने वाली है, नुनक्किस खुफिल खल्क, बुढ़ापा, बुढ़ापे का दौर क्या है, सेकंड चाइल्डहुड, बुढ़ापे का दौर क्या है, आखरत की तैयारी के लिए आखिरी मोहलत, और मौत के जहाज़ में बैठने से पहले वाली फ़ाइनल कॉल। 3-4 दफ़ा वो कॉल देते हैं, फलां फ्लाइट वालों को फ़ाइनल कॉल दी जाती है, आइए जल्दी बैठिए, फिर नाम लिए जाते हैं, मिस्टर फलां, मिसेस फलां, जहाज़ में आ जाएं। तो बुढ़ापा एक फ़ाइनल कॉल है। बुढ़ापा क्या है, एक नाम दूँ इसको, जिंदगी कबल अस मौत, मरने के पहले की आखिरी घड़ियाँ, ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा क्या है, इंसान मौत की ट्रेन का इंतज़ार करने वाली कैफियत। बुढ़ापे में नमाज नहीं पढ़ी जाती, रोज़े नहीं रखे जाते, इबादात नहीं होती, और जिनका सारी ज़िंदगी भी नेकियों में गुजरा उनकी नहीं होती, वो रोते हैं। तो उनके लिए एक पैगाम है कि बुढ़ापे की नेकी खुश अखलाकी, बीमारियाँ लग चुकी होती हैं, दवाइयाँ खाते हैं, चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, आप कुछ और चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द वाले जवान हैं, सेहतमंद हैं, वो खाएंगे, वो हंसेंगे, बोलेंगे, आप वो अगर बुढ़ापे की नमाज़ पढ़नी है तो वो खुश अखलाकी है, दिल बड़े रखें, बर्दाश्त रखें। अमूमन बुढ़ापे में इंसान शिकायती रवैये का शिकार हो जाता है, और जिधर बैठा उसके साथ शिकवे, जिसके साथ बैठा उससे, अक्सर बूढ़े लोग हैं वो, उनको अपने ऊपर इसका काबू भी नहीं रहता। हालांकि आपको पता है कि बुढ़ापे में एक ऐसी खैर है जो जवानी में नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। फकीरी, इट्स आधी से आगे ना, उठने को नहीं दिल कर रहा, बैठने को दिल नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ी जा रही, झुका नहीं जा रहा, सजदा नहीं हो रहा, क़याम नहीं हो रहा। ये एज वो तोहफा है जो बुढ़ापा देता है, अगर बंदा इसको ले ले तो उसका बुढ़ापा खूबसूरत होगा। एक्सेप्ट दिस, मैं हर चीज़ नहीं खा सकूँगी, मुझे हर चीज़ नहीं सूट करेगी, मैं हर चीज़ नहीं पहन सकती, मैं हर चीज़ नहीं खा सकता, पी सकता, जा सकता। कितने दिन तो हो गया, कल आपको जुमला सुनाया था कि 25 साल के बच्चे को दफना कर आकर मियाँ बीवी कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें 25 साल तक बच्चे की खुशियाँ तो दिखाई, और हमारा हाल क्या है, सारी ज़िंदगी खाया, अब नहीं खाया जा रहा तो छोड़ दे। बचपन में दूध पीने वाला बच्चा कभी रोता है कि मुझे चिकन क्यों नहीं मिला, और सालन क्यों नहीं मिला, और मुझे चने और कबाब क्यों नहीं मिले? जब वहाँ चुप थे तो यहाँ क्यों बोलते हैं? सब छोड़ दीजिए। और यकीन करें, मैं अपने पूरे देसी बहन भाइयों को ये मैसेज दूंगी कि बुढ़ापा अगर खूबसूरत करना है तो एक्सेप्ट कीजिए चंद हकीकतों को, और इसी का नाम मेज़ है। बूढ़ा शख्स उस फलदार दरख्त की मानित होता है जो अपना फल दुनिया को देकर रुखसत होने वाला है। अल्लाह हम सब के बुढ़ापे अच्छे करें। आप कहेंगे अभी हमारे बुढ़ापे दूर हैं, तो हम सब के घरों में कोई ना कोई बूढ़ा है, उन पर भी रहम कीजिए, उनकी बदमिजाजी को अपनी नेकी समझें, उनसे दुआएं ले लें, उनके आगे चुप कर जाएं, सारी ज़िंदगी के कफारे हो जाएंगे। फेथ इन एक्शन क्या है कि अपने अमाल की इसलाह करनी है ताकि क़यामत के दिन हमारे अज़ा हमारे खिलाफ़ गवाही ना दें। शैतान अल्लाह ताला की नाफरमानी को मुज़य्यन करता है, इसके फरेब में नहीं आना। शैतान के शर से हिफाजत के लिए दुआओं का एहतमाम करना। अब ज़रा से सुनिए आयत 68 से 83, इंसान की बेबसी। वमन नौमिर हुनुनक किस खुफिल खल्क, और जिसे हम बूढ़ा करते हैं इसे पैदाइशी हालत की तरफ फिर उलट देते हैं, क्या फिर भी वो नहीं समझते? और ना तो हमने पैगंबर को शेर सिखाए और न ये इसके लायक है, वो तो सिर्फ नसीहत और वाज़ेह कुरान है ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो जिंदा है और कुफार पर हुज्जत साबित हो जाए। क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए हैं, और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे कर दिया जिनमें से बास तो इनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त खाते हैं। इन्हें इनमें से और भी बहुत फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें यानी दूध, क्या फिर भी वह शुक्र अदा नहीं करेंगे? कितनों ने दूध पीते हुए शुक्र किया कल इफ्तारी के वक्त, दूध में कभी रूह अफ़ज़ा डालते, कभी सेवन अप डालते, कभी शरबत डालते, ये डालते। आज इस आयत को नोट कर लें तो आपने बच्चों को ये आयत बतानी है, घर वालों को, कि देखिए ये दूध भी कितनी बड़ी नेमत है। पीछे भी सूरत मोमिनून में भी अल्लाह ने कहा था काली भैंस में से सफ़ेद खुशबूदार दूध कौन निकालता है? ज़रा से इमेजिन करें, खून की नालियाँ भी हैं, पेशाब की नालियाँ भी हैं, और दूध की भी हैं। कभी आज तक आपने सुना कि गाय ने दूध दिया और उसमें पेशाब की बू थी क्योंकि अंदर से पाइप लीक कर गया, या दूध लिया तो वो सुर्ख रंग का था, खून निकल आया? एक दूध का ग्लास मुबल्लिग है किसके लिए? साहिबे मार्फत के लिए। अपनी नेमतों को अल्लाह के संदेशे समझो, जो नेमत दिखेगी ना ये अल्लाह की तरफ से, बस वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, तो आपकी इफ्तारियाँ और सहरियाँ बबरकत हो जाएंगी, और जो उसमें अल्लाह आपको अजर देगा जब आप साथ साथ गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बर करेंगे। लेकिन लोगों का हाल, और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि इनमें इनकी ताकत ही नहीं कि वो मदद कर सकें, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं, बस आपको इनकी बात गमनाक ना करे, ये नहीं कहा गुस्सा ना दिलाए। देखिए दाई दिन के अंदर ना दर्द होता है, गुस्सा नहीं होता। आज हम देखते हैं कि तबलीग के अंदर गुस्सा शामिल हो गया है, धमकी का स्टाइल, टॉन्टिंग स्टाइल, ताने देने का अंदाज, और हर एक को जहन्नमी। लिख के बताना है कि पहले इसको जहन्नम में डाल के आओ, फिर हम आगे बात करेंगे। दीनदार तो वैसे ही जहन्नमी है दूसरे दीनदारों की नज़र में, मुझे अच्छी तरह याद है, नाम नहीं लूँगी। एक ब्रदर है, उन्होंने एक ऐप बनाया, फिर उन्होंने उस ऐप पे मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें डाल दी कि सब चीज़ें इसमें होंगी तो जिससे जो फ़ायदा उठाना चाहे फ़ायदा उठा ले। तो खैर उनके साथ हमारी भी कोई डील हुई, उन्होंने हमारी भी चीज़ें डाली, तो बातों में उन्होंने बताया कि वैसे वो खुद तो जहन्नमी है पक्के, क्योंकि जिस मसलक को दूसरे के मसलक की कोई चीज़ उस ऐप पे देखती है ना, तो वो इनको आके कहता है आप तो भाई बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, आप गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। यानी मैं एक सिर्फ समझाने के लिए बात कर रही हूँ, आपकी नज़र में गंदे काम करने वाले जहन्नमी नहीं, उनके साथ तो बड़ी हमदर्दी है हमें, देखना अल्लाह ने इन भोले भाले लोगों को बचा लेना है, बस कपड़े पहनने भूल जाते हैं, भूले ही हैं ना, भोले जो हैं। यानी उनको बेचारों को क्या पता कि शराब बुरी होती है, इतनी तो अच्छी बॉटलें हैं। यानी सारी हमदर्दियाँ वही बात है, शिद्दतुल कुफ्फार रुहमा बैनहुम का रुख बदल क्या, आपस में हम खूब शदीद हैं और रुहमा दूसरों के साथ हैं। अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं, आपको गमनाक ना करे। और ये बख़ चौथी दफ़ा ये पैगाम कह लीजिए कि अभी तक मेरी नज़रों में कि नबी के दिल में दर्द था, और मुखलस जो होता है ना वो पुरदर्द होता है, उसको अपनी जान नहीं प्यारी हबीब की तरह, उसको अपना प्रोटोकॉल नहीं प्यारा कि मैं खुद के मुंह से कहूँ कि मुझसे दर्ज करवा लो, अच्छा मैं कुछ बोल दूँ, हज़रत यूसुफ़ की तरह खुद ही ऑफ़र कर दिया कि अच्छा मैं आपका वज़ीर ख़जाना बन जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है इधर कहत आ रहा है तो मैं आपकी कुछ मदद करूं। तो कभी भी कोई आपके अंदर खूबी हो ना, तो लोगों के डर की वजह से ना तो उसको छुपाएं और ना जाहिर करें, यही बात हमें इधर समझ आ रही है। फरमाया हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं, क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया, फिर यकायक वो सरीख झगड़ालू बन जाता है। बचपन से लड़ता है, पहले बच्चा माँ से लड़ता है, दूध नहीं पीता, जिद्दें करता है, रोता है, माँ मुँह धोती है तो रो रहा है, माँ कपड़े बदलाती है तो रोता है, ज़रा सा बड़ा होता है तो अपने बड़े भाई से बहन से लड़ता है, फिर और बड़ा होता है तो स्कूल से रोता हुआ आ जाता है, फिर शिकायतें आती हैं और फिर तो रोते रोते दुनिया से चला जाता है। इंसान की तबीयत में झगड़े हैं, और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया, कहने लगा इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है। आप जवाब दीजिए कि इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें अव्वल मरतबा पैदा किया। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। कोई शर्मिंदगी नहीं कि हाय हाय वाकई ये कैसे होगा। मक्का में एक शख्स था, वो एक सूखी पुरानी हड्डी को उठा के ले आया, कहने लगा मैं यूही हाजिल निज़ाम वहीरमीम, ये कौन है इस गली सड़ी हड्डी को ज़िंदा करेगा, कहा इसको वही ज़िंदा करेगा जिसने इसको पहली दफ़ा पैदा किया था। तो ये इंटेलेक्चुअल स्टाइल आज के उस सारे प्रोपेगंडे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है जो वेस्ट इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। फिर इसी तरह फरमाया जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है, वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं, बेशक कादिर है, और वही पैदा करने वाला दाना और बीना है, वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे इतना फरमा देना काफ़ी होता है कि कुन फयकून, हो जा तो वो इसी वक्त हो जाती है। बस पाक है अल्लाह, वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। आखिरी आयत को ज़रा ज़हन में रखिएगा, इसमें क्या पैगाम है, अमल के नुक्ते क्या हैं, कि इंसान की सारी कुव्वतें अल्लाह की दी हुई हैं, वो जब चाहे वापस ले सकता है। जब इंसान की हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो बस वही अल्लाह इताअत के लायक है, हमने उसी को राज़ी करना है। तो आप देख रहे हैं कि सूरह यासीन पूरी हुई,